आज बहुत स्पेशल डे है, सुशीला रुक्मिणी माता जी और महेश प्रभु के घर में श्री श्री गौर निताय का आगमन हुआ है। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का डे है। ठाकुर जी की अर्च्य विग्रह में सेवा करने का अवसर मिलना बहुत सौभाग्य का बात है। रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताते हैं भक्ति के जो मुख्य पांच अंग है, जैसे कि भागवत श्रवण, मथुरा वास, वैष्णव सेवा, जीव दया, और एक जो है वो है अर्चना, अर्च विग्रह की सेवा। तो भक्तों के जीवन में बहुत बड़ी आनंद की बात है भगवान की सेवा। भगवान जो है अलग अलग रूप में विराजित है, परा रूप में है, विभू रूप में है, विभव रूप में है, व्यूह रूप में है, परमात्मा के रूप में है, लेकिन अर्च्य विग्रह रूप में हम उनके साथ एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। परा रूप मतलब क्या है? भगवान का परा रूप मतलब जो गोलोक वृंदावन में जो भगवान का रूप है वो परा रूप है। तो गोलोक वृंदावन में जिस रूप में भगवान विराजमान है उस रूप को हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा भौतिक शरीर है और वो आध्यात्मिक रूप है। आध्यात्मिक रूप को देखने के लिए हमें भी आध्यात्मिक रूप में होना चाहिए। तो उसका मतलब वहां तो हम भगवान को तभी देख पाएंगे जब हम वहां पे जाएंगे, उसके पहले कोई चांस नहीं। और जो उनका व्यूह रूप है, जैसे उनके जो एक्सपेंशन होते हैं, शंकर्षण, अनिरुद्ध, ये जो उनके एक्सपेंशन है उनका भी दर्शन मुश्किल है। और उनके जो विभव रूप है, जैसे कि वामन अवतार, नरसिंह अवतार, वो भी हमें दर्शन मुश्किल है। अब परमात्मा रूप में हमारे हृदय में सब समय ठाकुर जी है, लेकिन वो भी हमें दिखाई नहीं देते। तो अब जब भगवान से हमें एक रिश्ता स्थापना करना है तो कैसे करें? भगवान भगवत गीता के नवम अध्याय में बोलते हैं, 34th श्लोक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बोलते हैं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्ते ममे वैश्यसि युक्तवैवं आत्मानां मत्परायण। तुम्हारी आत्मा को मेरे परायण करो, मेरे बारे में सोचो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। अब कैसे करें नमस्कार? कहीं तो दिखने चाहिए ना, ठाकुर जी तो सब जगह है। यूनिवर्सल फॉर्म जब भगवान अर्जुन को दिखाते तब अर्जुन क्या बोलते, मैं कहाँ से प्रणाम करूँ, समझ में नहीं आता, सब जगह आप। तो लेकिन हमें अगर भगवान से रिश्ता बनाना है तो कहीं एक जगह उसकी स्थापना होने से हम उनके साथ एक रिश्ता बना, भगवान की पूजा करना, उन्हें नमस्कार करना, उनके साथ एक संबंध बनाएंगे तभी तो होगा। तो इसीलिए भगवान बहुत दया करके अर्च्य विग्रह रूप में आते हैं, और अर्च्य विग्रह रूप में जब आते हैं तब सरल भाव से प्रेम का आदान प्रदान हम भगवान के साथ कर सकते हैं। हम भगवान को नमस्कार कर सकते हैं, हम उनकी पूजा कर सकते हैं, हम उन्हें भोग धर सकते हैं। कितने दयालु है भगवान जो इस रूप में आए हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए। तो भगवान अर्च्य विग्रह के रूप में क्यों आते हैं? उसके दो कारण हैं। क्यों आते हैं भगवान इस रूप में हमारी सेवा स्वीकार क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान में दो जो एक गुण है, एक है आश्रय वात्सल्य और एक है सौलभ्य। आश्रय वात्सल्य मतलब भगवान चाहते हैं हमसे सेवा लेना, उनको अच्छा लगता है। जैसे कभी कभी आप देखो बच्चों को जब बुखार आता है तब हम उन्हें कोई स्पेशल कंसेशन देते, ठीक है स्कूल मत जाओ, ठीक है होमवर्क मत करो, माँ जो है गोदी में जो है उसको ललाती है, प्यार देती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी पेट में दर्द नहीं होने से भी बोलेगा मम्मा दर्द कर रहा है, जानबूझ के प्यार लेने के लिए। उसको जरूरत नहीं है, उसको कोई दर्द नहीं है, बस वो आपका अटेंशन और प्यार लेना चाहता है। ठाकुर जी का भी यही है, उनको जरूरत नहीं है लेकिन वो आपका प्यार लेने के लिए इस रूप में आते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको नहलाए, वो चाहते हैं कि आप उनको भोग धराए, वो चाहते हैं कि आप उनकी चिंता करें, भगवान को ठंडा लग जाएगा, थोड़ा सा आप शाल उड़ा दिया, उन्हें अच्छा लगता है। तो इसीलिए वो इस रूप में आते हैं, वात्सल्य, हमारा प्यार लेने के लिए। आपने करारा बाई की कथा सुनी है? जगन्नाथ पुरी में एक वृद्ध महिला थी करारा बाई, तो उसको भगवान के साथ में वात्सल्य प्रेम था, भगवान को अपना बेटा मानती थी, तो वो रोज भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी। हाँ याद आ रहा है, तो बहुत प्यार से भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी और ठाकुर जी खुद आके वो खिचड़ी खाते थे। और एक बार क्या हुआ, जो कोई साधु उनके घर में आया, करारा बाई के घर में आया, और उसने देखा कि भाई ये जो महिला है ये तो नियम का पालन नहीं कर रही है, इसको तो जो है घर को पहले क्लीन करना है, जहाँ रसोई बनती है रसोई घर को क्लीन करना है, फिर खुद स्नान करना है, उसके बाद जाके भगवान का भोग बनाते हैं, लेकिन ये तो बिना स्नान किए बिना कुछ जो है भगवान का भोग बना रही है। तो उसने बोला देखिए माता जी आप ये गलत कर रही है, मैं आपको सिखाता हूँ आप उस तरह से करिए। तो दूसरे दिन सुबह उसको बोला जाओ पहले आप इसको क्लीन करो फिर आप स्नान करो। और ठाकुर जी को तो आदत है रोज उनके हाथ की बनाई खिचड़ी खाने के लिए, तो ठाकुर जी आ गए रोज के समय पे, बोले मैया मेरी खिचड़ी कहाँ है। तो मैया बोलती है ठहरो तनिक ठहरो, लल्ला देख नहीं रहे हो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, दो मिनट ठहरो। तो भगवान फिर और कुछ काम दे के थोड़ी देर के बाद फिर आए, अब फिर देख रहे तो इस बार बर्तन मांज रही है, बोल रही भूख लगी है खिचड़ी कहाँ है, बोला ठहरो अभी तो बर्तन क्लीनिंग हो रहा है। ठाकुर जी फिर थोड़े समय के बाद आए, बोला ठहरो मैं नहा के आती हूँ उसके बाद तुम्हारा खिचड़ी बना रही। और ये जो स्वामी जी जो बैठे हैं कुर्सी पे एकदम, वो एकदम गाइडेंस दे रहे कि अब ऐसा करो ऐसा करो। और ठाकुर जी को बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर देख के, यहाँ मेरे को जोरों की भूख लगी है और ये बोल रहा है इसको साफ करो उसको साफ करो। अंत में जाके वो मैया जो है नहा धो के खिचड़ी बना देती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है जहाँ पे ठाकुर जी वेट करते हैं, वहां पे ठाकुर जी उस मैया को बोलते हैं जल्दी करो माँ जल्दी करो भूख लगी है जल्दी करो। फाइनली ठाकुर जी को खिचड़ी दे देती है। अब खिचड़ी एकदम गरम गरम है तो भगवान जो है उफू उफू करते करते खा रहे हैं। और जब भगवान जी खिचड़ी खाने के लिए ठाकुर जी बैठ गए तो मंदिर में जगन्नाथ जी के मंदिर में पुजारी ने शंख बजा दिया। अब भगवान को सुनाई दिया कि शंख बज गया मुझे तो जाना है, क्योंकि इमेजिन करिए पुजारी ने शंख बजाया, कर्टन खुल गए भगवान गायब। अब सारे बोलेंगे भगवान कहाँ है यहाँ पे। अब वो फूफू करते हुए खाए और जैसे मतलब शंख कंप्लीट हुआ वो भाग के बैठ गए। अब ऐसे करके जगन्नाथ जी तो ऐसे बैठते तो बैठ गए, अब उनको मुंह धोने का और हाथ धोने का टाइम नहीं रहा। अब जब पुजारी ने कर्टन खोला बोले ये क्या है सब जगह खिचड़ी लगी हुई है। तो बोले ठाकुर जी कहाँ से खिचड़ी खा के आ गए आप, सुबह सुबह वो भी मंगला आरती के टाइम पे खिचड़ी कहाँ से खा के आ गए। और तब ठाकुर जी जो है कंप्लेन करते हैं, पुजारी को बोलते कि देखो मेरी माँ करारा बाई मेरे लिए इतना अच्छा से खिचड़ी वगैरह बना रही है और वहां पे एक साधु उसे डिस्टर्ब कर रहा है, बोल रहा है ये साफ करो ये धोवो ये करो, तो तुम जाके जो है उसको बताओ कि मेरी माँ को डिस्टर्ब मत करे नहीं तो मैं लेट आऊंगा आरती में। और फिर पुजारी जाता है मार्केट में और ढूंढता है कि भैया करारा बाई कौन है इधर, करारा बाई कौन है। और फिर उसके घर में पहुंचता है और फिर वो साधु को बोलता है कि आप जो है इनको डिस्टर्ब मत करिए, जैसे पहले बनाती थी खिचड़ी वैसे ही बनाने दीजिए। ये एकदम शॉक हो जाते हैं कि ठाकुर जी खुद आते हैं इनका खिचड़ी खाने के लिए। और फिर इनका नाम था करारा बाई लेकिन उनका नाम चेंज हो गया, क्योंकि जल्दी करो माँ करके भगवान बोल रहे थे तो उनका नाम हो गया करोमा बाई। तो तब से जगन्नाथपुरी में उसको सब करोमा बाई बुलाते थे। और एक दिन जब करोमा बाई का देहांत हो गया उस दिन भगवान रोए हैं, जगन्नाथ जी रोए और उन्होंने उस दिन पूरा खाना नहीं खाया। अब आप पूछेंगे माता जी कैसे पता चला कि जगन्नाथ जी ने खाना नहीं खाया, ठाकुर जी खाना स्वीकार किया है कि नहीं किया है वो जानने के लिए भी जगन्नाथपुरी में एक पद्धति, वो एक जो है शीशा होता है उसमें भगवान का शैडो देखते हैं, शैडो अगर नहीं आया ऐसा कुछ बहुत अलग अलग प्रोसेस है, मैंने एक ये सुना था तो पता चलता है कि स्वीकार नहीं किया। तो पुजारी लोग चिंता कि भगवान खाना क्यों नहीं खा रहे, और फिर जो हेड पुजारी है वो जाके ठाकुर जी को पूछते हैं कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे। तब ठाकुर जी बोलते हैं क्योंकि मेरी माँ जो है आज चल बसी तो अब मेरे लिए खिचड़ी कौन बनाएगा। तो फिर पूरा जगन्नाथ मंदिर में जो सब शोक बनाए और उसके बाद से जगन्नाथ जी का जो छप्पन भोग होता है उसमें ये करारा बाई की खिचड़ी भी एक भाग बन गया। तो अब रोज जो है पुजारी लोग करारा बाई की खिचड़ी बना के भगवान को भोग धराते थे। तो आश्रय वात्सल्य, ठाकुर जी आपका प्रेम लेना चाहते हैं बस। बांके बिहारी मंदिर के पास भी एक प्रसिद्ध कथा ये घटना हुई थी, ये बांके बिहारी मंदिर के सामने ही एक मिठाई वाला था, बहुत अच्छा बिहारी जी का भक्त था लेकिन बहुत गरीब, उसको कभी बड़े बड़े ऑर्डर आते नहीं थे। और एक दिन उसको बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, किसी ने बोला 40 केजी लड्डू बना दो, तो बहुत खुश, एकदम लड्डू वड्डू बना रहा है और बाकी बिहारी के बारे में मतलब याद करते करते गाना गाते गाते प्यार से बना रहा है। और तभी देखा वहां पे एक छोटा सा बच्चा आया, बोला बाबा एक लड्डू दीजिए। उसको मना करने का दिल नहीं किया लेकिन मन में विचार आया कि लगता है कि फ्री देना पड़ेगा, ये तो कुछ देने वाला लग नहीं रहा है, छोटा सा बच्चा है। तो उसने प्यार से लड्डू जो है दे दिया। बच्चा बहुत सुंदर, बहुत ही आकर्षण। और जैसे ही उसके हाथ में लड्डू रखा, इस बच्चे ने क्या किया, एक सोने की बैंगल उस हाथ में थमा के भाग गया। इसने सोचा ये बच्चा इतना धनी है, इतना एक लड्डू के लिए सोने की बैंगल दे दे, तो उसने संभाल के रख दिया। उसका ऑर्डर जो था 40 KG का उसने सप्लाई कर दिया। दूसरे दिन मॉर्निंग बाकी बिहारी का पुजारी भागता हुआ आया, बोला भगवान की सोने की बैंगल मिसिंग है। तो किसने लिया, किसने लिया, किसने लिया? तो तब ये जो स्वीट शॉप वाला था उसने आके पूछा कहीं ये तो नहीं है? तो बोला हाँ यही तो है, तुमको कहाँ से मिली? और फिर वो रोने लगा, बोला ठाकुर जी खुद आए आए, मेरा लड्डू स्वीकार किए और मुझे ये बैंगल देके गए। तो अब क्या ठाकुर जी को लक्ष्मी माता को लड्डू की रेसिपी पता नहीं है क्या? राधा रानी को लड्डू की रेसिपी पता नहीं है क्या? प्यार से भक्त की सेवा स्वीकार करने के लिए ठाकुर जी आते हैं। तो उनका ये स्वभाव है आश्रय वात्सल्य, वो प्रेम लेना चाहते हैं। और दूसरा उनका स्वभाव है सौलभ्य, वो सोचते हैं कि भक्तों की सुविधा जिसमें हो मैं उस रूप में आऊं। जब अर्च विग्रह रूप में आते हैं तो एकदम हम इजी से उनकी सेवा कर पाते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा अगर अपने माँ बाप को प्यार देना चाहे, आलिंगन करना चाहे, क्या करेंगे माँ बाप? पहले तो झुकना पड़ेगा। आप अगर अपना सीधा ऐसा खड़े रहेंगे तो वो आपको प्यार नहीं दे पाएंगे। आप अपना झुकेंगे, आप अपना गाल नीचे करेंगे, तब जाके आपको जो एक आपका बेटा या बेटी किस कर सकता है। तो ठाकुर जी इसीलिए नीचे झुक रहे हैं, मतलब उनका जो रूप है उनसे वो अर्च विग्रह के रूप में अवतार ले रहे हैं कि हमें कन्वीनियंट हो भगवान की सेवा करने के लिए। तो आज बहुत शुभ दिन है, सुशीला रुक्मिणी माता जी के घर में ठाकुर जी आए हैं प्यार लेने के लिए। अब जब ठाकुर जी आ गए हैं, अब कैसे ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए? रानी ठीक से सुनो, अब क्या होना चाहिए, बहुत केयरफुल। अब घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब ठाकुर जी आए हैं, हाँ अब महेश प्रभु पे आप चिल्ला नहीं सकते। ठाकुर जी सुन रहे सब, एकदम कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। हाँ, और जो आप कुकिंग करेंगे भाव से बनाना है। पहले भी आप ऑफरिंग कर रहे थे लेकिन अब और एक फैमिली मेंबर ऐड हो गया है तो अभी आपको शायद थोड़ा ज्यादा बनाना पड़े। और गौर निताई को बहुत ही प्यार से आपको जो है ऑफरिंग करनी है और उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानना है। तो अब आप जब आउट ऑफ स्टेशन जाते हो, बाहर जाते हो, आपको उनको या तो साथ में लेके जाओ या किसी के घर में आप जो है उन्हें शिफ्ट करो, लेकिन अब आपके परिवार के सदस्य हैं। और जब एक बार ठाकुर जी हमारे घर में स्थापना हो गई तो उसके बाद उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पहले तो एक रिश्ता बना लीजिए, आप किस भाव में उनकी सेवा करना चाहते हो, और उसके बाद आपका जो डे टू डे आचरण है वो भी बहुत ज्यादा आपको केयरफुल रहना है। आप कैसे उनकी प्रार्थना करते हो, आप कैसे उन्हें अप्रोच करते हो। आप अगर शास्त्र में देखो तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे कैसे भगवान अप्रोच किया जाए। क्योंकि आप देखिए एक साधारण मनुष्य को भी कितने सारे व्हाट्सएप आते हैं, दिन में आते हैं ना। अब मैं थोड़े दिन पहले ही सोच रही थी ये फोन के व्हाट्सएप देख के इस फोन का क्या करे, नदी में बहा दे के कुछ नहीं कर पा रहे। एक तो व्हाट्सएप डी इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है उसमें, मंदिर के काम है बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन है, क्वेश्चन आंसर्स है, लेकिन अगर ना खोले तो एक साथ में 200-300 आ जाते हैं तो फोन जाम हो जा रहा इतना बड़ा। मैं सोच रही थी देखिए जिस तरह से एक साधारण मनुष्य को इतने मैसेज आते हैं, भगवान को कितने मैसेज आते होंगे दिन के, हाँ कितने आते होंगे। और हम भी बहुत सेलेक्टिव है, जब हमारे व्हाट्सएप का मैसेज आता है हम बहुत सेलेक्टिव है, हम कौन सा मैसेज पहले देखेंगे, सही है ना। पूरे नंबर लगे रहते हैं 1, 2, 3 ऐसे ग्रीन में, लेकिन हम एकदम सेलेक्ट करते कि कौन सा वाला हमारा इम्पोर्टेंट है। अब ठाकुर जी भी हमारा मैसेज सेलेक्ट करे एज इम्पोर्टेंट, उसके लिए हमें क्या करना है ना। इतने सारे मैसेज में हमारा मैसेज पहले देखे उसके लिए कुछ तो होगा ना, कुछ तो प्रोसेस होगा। आज उस प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा मैसेज पहले देखे। भगवान को हमारा मैसेज पहले देखना है, हम किनसे सीख सकते हैं? ये जो पहले भगवान को मैसेज भेज चुके हैं उनसे ही सीखना है, हम तो नए हैं इसमें, तो जो पहले मैसेज भेजते थे उनसे सीखना है। अब पहले मैसेज कौन भेज चुके हैं? आप भागवत में देखिए तो उत्तरा ने मैसेज भेजा है, द्रौपदी ने मैसेज भेजा है, ध्रुव महाराज ने भेजा है, प्रहलाद महाराज ने भेजा है, भीष्म ने भेजा है, कुंती देवी ने भेजा है, कितने लोगों ने, अर्जुन ने भेजा है। तो अब हमें क्या करना है, उन्होंने कैसे मैसेज भेजा है हमें भी वही सीखना है। तो भगवान को अप्रोच करने की क्या पद्धति है, तो भागवत में अगर हम पढ़े तो हमें समझ में आता है कि भगवान को हम अगर अप्रोच करना चाहे तो सबसे पहले सिस्टम है हम भगवान को नमस्कार करें। और बोलेंगे अब तो हम ये तो हम रोज करते, मतलब नहीं नहीं सिस्टमेटिकली चार चीज करनी है हमें। सबसे पहले जैसे आप अर्च विग्रह के सामने आप आए हो, सबसे पहले आपको करना है नमस्कार। ये बात छोटी सी लग रही होगी कि नमस्कार करने में तो करते हैं नमस्कार, ये नमस्कार के पीछे बहुत बड़ी भावना है। मैं आपको फिजिकली नमस्कार की बात नहीं कर रही हूँ, कंप्लीट नमस्कार, जो नमस्कार के जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, विनम्र भाव से, मानसिक रूप से शरणागति लेते हुए भगवान को नमस्कार करना। ये नमस्कार का ये जो फिजिकल पोजिशन भी है ना, बढ़िया है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे सिर को नीचे झुकाते। एक्चुअली सारे प्रॉब्लम इधर ही है, ये जो हमारा अहंकार है ना, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये सारा कहाँ है, ये सब कहाँ स्टोर करते हैं हम इधर। ये जो बड़ा सा कोकोनट है ना, इसको जो हम लेके लेके घूमते हैं, इसको नीचे मारना है। जब इसको नीचे मारते हैं भगवान के सामने, तब कम से कम हम थोड़ा लेवल में आते हैं। सबसे पहले नमस्कार, नमस्कार जब करते मनसा वाचा भगवान को हम शरणागति लेते हैं कि ठाकुर जी मैं आपकी शरण में हूँ। और नमस्कार करते समय सबसे इम्पोर्टेंट है, कभी भी आपके हाथ जो है उसको ऐसे बंद नहीं करना चाहिए। हम जब भी नमस्कार करते हैं हमें हाथ खुला रखना चाहिए, ऐसे खुले हाथ से, मतलब हम बोलना चाहते हैं ठाकुर जी हमारा कुछ नहीं है, हम कम्प्लीटली। जब पुलिस हमें दिखाते, जब पुलिस बोलते क्या होता है, सबसे पहले हैंड्स अप, उसका मतलब पुलिस ये बोलना चाह रहा है कि आपके हाथ में कुछ है तो नहीं, कुछ है तो रख दो, पूरा पूरा सरेंडर। तो जब ठाकुर जी को भी हम प्रणाम करते तब पूरा पूरा सरेंडर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कंप्लीट आपको सरेंडर कर रहा हूँ। तो उस भावना से हमें नमस्कार करना चाहिए। कुंती देवी क्या करते हैं, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांगने। क्या कहते हैं, नमो, सबसे पहले नमो, नमन करना चाहिए भगवान को, हमें नमस्कार करना चाहिए। सो नमस्कार करने से हम में जो अहंकार की भावना है वो चली जाती है। और नमस्कार से भगवान के पास जाके बात करने से पहले, कुछ मांगने से पहले, पहले उनको बटर तो लगाओ थोड़ा। नमस्कार ये फर्स्ट स्टेप है। सुबह सुबह जब मैं बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, समहाउ उसी टाइम पे बहुत लोग फोन करते हैं। मैं एक तो ऐसे फोन में बात कर, बाकी उनसे इशारा में ही कि वाटर बॉटल लिया, ये लिया, वो जा रहे। तो मेरा बड़ा बेटा तो बेचारा वो बहुत शांत है, चुपचाप से चला जाता है। निम्मा ही जो छोटा वाला है वो बहुत चालाक है। मैं ऐसे बात करते रहती हूँ, वो सीधा मुझे पहले प्रणाम करेगा जा रहा हूँ। और जब वो ऐसा करता है ना, मैं एक मिनट के लिए फोन साइड में रख देती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उस पर आ जाता है। इतना प्यारा लगता है कि जब वो नमस्कार करता है, मैं एक मिनट के लिए फोन कट कर देती हूँ, बोलते हाँ ओके बाय हरे कृष्ण। अब कितना स्मार्ट है कि एकदम राइट वे है अटेंशन लेने के लिए। हाँ, तो हम जब एक साधारण इतना ये हो जाते तो भगवान तो हमें कितना प्यार करते हैं। और जब इतना प्यार करने वाले ठाकुर जी जब देखते हैं कि हमारा, मेरा बच्चा मेरे सामने नमस्कार कर रहा है, सबसे पहले अगर वो राधा रानी से बात भी कर रहे तो बोलेंगे एक मिनट ठहरो, नमस्कार कर रहा है। उनका ध्यान हमें अपनी ओर लेना है, तो सबसे पहले ठाकुर जी को नमस्कार करना। सेकेंड स्टेप क्या करना है, हम नमस्कार करने के बाद हमें उन्हें प्रेज करना है। ठाकुर जी को हमें प्रेज करना है, भगवान आप कितने पावरफुल हो, आप कितने दयालु हो, आपके बिना मेरा कौन है, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, ये सारी चीजें बोलना जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर आप चरित्र में देखो, भागवत में देखो, हर एक पर्सन पहले भगवान को प्रेज करता है, उसके बाद ही बात करता है। आप मुझे कोई भी स्तुति दिखा दो, आप मुझे कोई भी टॉपिक दिखा दो, भागवत में बिना भगवान का, बिना भगवान को प्रेज किए कोई भी कुछ बात नहीं करता। आप अगर, आपको याद है भागवत के पहले स्कंद में जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र फेंकता है, तब अर्जुन जब देखता है कि ब्रह्मास्त्र फेंका है, अब क्या करना चाहिए, तो भगवान को सरेंडर करता है। तो उस टाइम पे भी अर्जुन पहले स्तुति करता है, पहले भगवान को बोलता है कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भगवान को पहले प्रेस करना शुरू करता है, आप तो महायोगी है, आप में बहुत शक्ति है, आप तो पूरे मेटीरियल वर्ल्ड के जो आपके अधिपति है, आप ये है, आप वो है। इमेजिन करिए अर्जुन की स्थिति तो कितनी मुश्किल में है, वो तो नॉर्मली ऐसे मंदिर दर्शन करने नहीं आया है, प्रेस करने। वहां अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र ऐसे करके पास में आ रहा है, उस टाइम पे भी वो कृष्ण कृष्ण महाभाव आ रहा है आ रहा है आ रहा है ऐसा भी नहीं बोला, वो बड़ी शांति से एकदम शांति से शुरू करता है। कम से कम उस टाइम पे तो बोल सकता था नो फॉर्मेलिटीज प्लीज कृष्णा फर्स्ट यू हेल्प लेटर वी विल कंटिन्यू, कुछ भी नहीं, तभी भी कृष्ण कृष्ण महाबाहो पूरा प्रेयर करता है भगवान के। आप जाओ तो घर जाके पहले फर्स्ट कैंडो खोल के देखो, पूरी स्तुति करता है, उसके बाद बोलते है कि इफ यू विश आप मेरी रक्षा करिए। आप अगर उत्तरा का भी देखो, उत्तरा के गर्भ की तरफ अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आ रहा था। अच्छा उत्तरा तो कम से कम बोल सकती थी कि इस मोमेंट में वो प्रेज वेज का थोड़ा शॉर्टकट कर देते, आप थोड़ा मदद कर दीजिए। वो भी पहले भगवान को प्रार्थना करती है, हे जगतपते आप ही रक्षा कर सकते हैं, आपके सिवा कौन है, आप रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद भगवान की प्रेज करने के बाद बोलती है कि मेरी रक्षा कर। द्रौपदी साड़ी खींच रहे वहां पे, फिर भी वो क्या बोलती, गोविंदा पुंडरीक्षा, भगवान को क्या प्रेस करती है, आपकी आंखें कितनी बड़ी, आपकी आंखें कितनी सुंदर है, हे गोविंद। उसके बाद प्रेस करने के बाद बोलती रक्षामय रक्षमाम शरणागता, मेरी रक्षा करिए। पहले भगवान को प्रेस करती है। गजेंद्र की स्तुति में क्या होता है, पहले वो स्तुति करता है, उसके बाद भगवान उसकी रक्षा करता है। द्रौपदी हो, उत्तरा हो, अर्जुन हो, गजेंद्र हो, हरेक क्या हम अगर हम देखते हैं, कुंती देवी हो, सारे भगवान की स्तुति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले नमस्कार करना उसके बाद स्तुति करना। सी अगर नमस्कार करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो भगवान नहीं बोलते थे। 9th chapter 34th श्लोक में क्यों बोले माम नमस कुरु, इम्पोर्टेंट होगा तभी तो इतना मेंशन किया ना, कि नहीं तो भगवान सोचेंगे उसमें उतना क्या बोलना, वो तो अंडरस्टूड है कि प्रणाम अंडरस्टूड है, फिर भी उन्होंने मेंशन किया बिकॉज ही वाज वेरी पर्टिकुलर कि माम नमस कुरु, प्रणाम तो करना है भगवान को। तो भगवान को नमस्कार करना है, भगवान को प्रेज करना है, उसके बाद क्या करना है, हमें अपने आप के बारे में क्रिटिसाइज करना है, मतलब हमें हमारे जो अवगुण है उसके बारे में हमें भगवान को बताना है। क्यों हम भगवान को हमारे अवगुण के बारे में बताएं, क्यों हमें बताना चाहिए, हमें भगवान को पता नहीं है क्या कि हम कितने गए गुजरे हैं, लेकिन हम ये हमारे में विनय भावना लाने के लिए। जब हम कोई चीज़ अगर मुझे किसी चीज़ डालनी है पॉट के अंदर में, पहले मेरे को वो पॉट सही से बनाना पड़ेगा ना। अगर मैं आज माता जी को, लक्ष्मी माता जी को 2 लीटर दूध देने के लिए तैयार हूँ, पर उनके पास पात्र तो होना चाहिए ना, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, आपके पास पात्र नहीं होगा तो, और अगर आपके पास पात्र है भी अगर उसमें होल्स है तो, और अगर आपके पास पात्र है भी लेकिन अगर वो पात्र उल्टा है तो, और अगर आपके पास पात्र है भी लेकिन अगर उसमें मट्टी है तो, उसका मतलब मुझे पहले मेरा पात्र तो सही करना है ना, तभी जाके भगवान की मर्सी मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगी। तो पात्र को सही बनाना मतलब सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, हमें विनयी होना चाहिए। तो हमें विनयी होना है तो कैसे विनयी होंगे, हमें ऐसे ही इतना अभिमान है अपने आप के बारे में। ठाकुर जी के पास में अगर खड़े भी रहे, कभी कभी हम ठाकुर जी को प्रे करते कि हमारी मदद करिए, फिर भी पीछे हमारा अभिमान तो होता है, नहीं करने से इंश्योरेंस तो है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हेल्प कर सकते तो करिए, अदरवाइज मेरा कोई प्रॉब्लम, मेरा सब सेटिंग रेडी है। तो ऐसे भी हमारा अभिमान तो बहुत ज्यादा है, तो कम से कम जब हम बोलेंगे मुंह से कि मेरा कुछ नहीं है, मैं एकदम गया, मेरे में कोई भक्ति नहीं है, मेरे में कोई भाव नहीं है, मैं इतने पाप करता हूँ, भगवान आप मेरी रक्षा करें, है ना। तो ये बात बहुत जरूरी है, पहले नमस्कार करना, भगवान को प्रेस करना, हमारे अपने बारे में जो है अवगुण जब हम भगवान को बताते तब हमें भी स्ट्राइक होता है, नहीं तो हम तो सोचते कि हम लोग सर्वगुण संपन्न है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जब भगवान के सामने हम बोलना शुरू करते तब पता चलता, हाँ सच में मेरे में ये प्रॉब्लम भी है, मैं ज़्यादा बोलती हूँ, मैं ज़्यादा जो जो भी हमारे में प्रॉब्लम है ये मेरे में प्रॉब्लम है। उसके बाद 3rd step हो जाने के बाद आप जाके ठाकुर जी को आपको जो मांगना है मांग सकते, भक्ति मांगेंगे या कोई और भुक्ति की चीजें मांगेंगे, जो भी मांगेंगे आप मांग सकते। श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बहुत अच्छा बोले थे, बोला ये सारा प्रोसेस होने के बाद आप जाके ठाकुर जी के सामने खड़ा रह के बोल सकते हैं, सर आई हैव अ प्रॉब्लम, सर मेरे पास प्रॉब्लम है, अब आप मेरे प्रॉब्लम सुनिए। क्योंकि आप स्टार्टिंग के 3 स्टेप कर चुके हैं, आप बोले सर आई हैव अ प्रॉब्लम, ये मेरा प्रॉब्लम है, आप मेरे को सॉर्ट आउट कर दीजिए। तो ये है भगवान को अप्रोच करने का प्रोसेस, तो हमें इसका पालन करना है। ऑफकोर्स ये सब प्रोसेस मैंने किया माता जी, लेकिन हमें कोई एक्शन नहीं मिला। ऐसे नहीं कि भगवान इमीडिएटली आकाश फाड़ के नीचे आ जाएंगे और गरुड़ के ऊपर जैसे गजेंद्र को हेल्प करने के लिए आ गए थे वैसे आ जाएंगे। भगवान का रेस्पॉन्ड करने का अपना ही तरीका है। सो प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक एक्सपेक्ट करते हैं जब भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान की फूल की माला गिर जाए, उसमें से फूल गिर जाए, मुझे सारा ये पता चल जाए कि भगवान ने मेरी प्रेयर एक्सेप्ट कर ली। वैसा कुछ ड्रामेटिक होता नहीं क्योंकि हम उतने स्तर के डिवोटी हैं। हम सकाम भक्त हैं, हम भगवान के पास जाते हैं क्योंकि हमारी कुछ इच्छा है। हम में और देवताओं में ज़्यादा फर्क नहीं है। देवताओं भी भगवान के पास तभी जाते हैं जब उनको कुछ इच्छा है, बाकी के टाइम वो बहुत बिजी रहते हैं अपने भोग में और क्या है वो उर्मिला ऐसे अलग अलग अप्सराओं के साथ एकदम वो लोग बिजी रहते हैं। जैसे कोई उनको अटैक करता है वैसे उनको भगवान याद आता है, चलो श्वेतदूत चलो चलते हैं भगवान के पास अभी। हमारे जैसे सेम हमारे जीवन में अगर सब अच्छा चलता हो तो हमें भगवान याद ही नहीं आते, वो हमारे जीवन के साइड डिश बन जाते हैं। मतलब एंटरटेनमेंट के बाद टाइम मिला तो एक बार जाएंगे मंदिर बस, नहीं तो जब प्रॉब्लम होता है तब वो एकदम हमारे मेन फिगर बन जाते हैं। तो देवता लोग भी क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम होता है तब भागते हैं भगवान के पास। और फिर भगवान भी क्या करते हैं, डायरेक्टली उनको दर्शन नहीं देते हैं, वो ब्रह्मा के द्वारा बोलते हैं कि ये बोलो मैं उनको मदद करने के लिए आऊंगा। तो भगवान भी हमारी जब प्रॉब्लम हम लेके जाते तो डायरेक्टली हमें कुछ नहीं बोलेंगे, वो गुरु साधु शास्त्र के द्वारा हमें जवाब देते हैं, गुरु की वाणी से हमें आदेश देते कि तुम ये करो तुम्हारे प्रॉब्लम से। कभी कभी शास्त्र, अगर गुरु एकदम सामने नहीं मिलते हैं और आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप बस ये जो 3 स्टेप है फॉलो करके 4th स्टेप में भगवान को प्रॉब्लम बता के फिर आप कोई भी शास्त्र खोलो, भागवतम भगवत गीता बस कुछ भी पेज खोल दो और आप देखो शास्त्र आपसे बात करेगा एकदम। आपको जो आप प्रॉब्लम को पूछ रहे थे क्वेश्चन बस उसी का आपको आंसर मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग के 3 स्टेप स्किप नहीं करना है, एकदम जाके खोल दिया भगवत गीता मुझे आंसर मिल जाएगा, बड़े भाव से हमें करना है। तो भगवान जो है गुरु साधु शास्त्र के द्वारा हमारी रक्षा करते हैं। सो आज ये जो हम अर्च विग्रह की स्थापना कर रहे हैं तो मैंने इसलिए ये टॉपिक लिया कि अब इस भाव से जो है आपको आगे बढ़ना है, भगवान को प्रणाम करना, भगवान को प्रेस करना, अपने आप को हम जो है हमारे जो अवगुण है भगवान के सामने प्रकट करना, और उसके बाद अगर हम भगवान से कुछ चाहते हैं तो मांगना, भगवान की सेवा करना। और गुरु साधु शास्त्र के में जो लिखे गए रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी मनगढ़ंत कोई ये नहीं करना है, क्योंकि भक्ति की विधि भी बहुत, एक तो रागानुगा भक्ति है एक विधि भक्ति है। तो हम ये नहीं कर सकते वो जो पुरुषोत्तम चौबे का राधा मदन मोहन की जो कहानी है कि दातून करते करते खिचड़ी बना दी भगवान के लिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए जानबूझ के मैंने ये टॉपिक निकाला है कि हमें तो विधि विधान के अनुसार। तो अब आप जो है जब आपके घर में अब अर्च विग्रह की स्थापना हो रही है तो सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, घर की सफाई ठीक से करना है। अब ठाकुर जी आपके घर में विराजे है तो घर का हर एक कोना, हाँ बाथरूम हो या किचन हो या हर एक कोना, मैंने आपको एक कथा बताई थी ना कैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी मायापुर में राधा माधव मंदिर के बाहर में सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और उन्होंने देखा कि बाहर में सब रूखे सूखे पत्ते पड़े हुए थे और प्रभुपाद जी के पीछे पीछे उनके सन्यासी शिष्य भी डंडा लेके जो है सब चल रहे थे। और प्रभुपाद जी ने बोला कि ये क्या है इतनी गंदगी, यहाँ पे सारे पत्ते पड़े हुए हैं। तो आप लोग को पता है रात को राधा माधव आते हैं और इस झाड़ के नीचे वो जो है अपना झूलन करते हैं। और जैसे ही ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला सारे सन्यासी ने अपना डंडा फेंका और झाड़ू ढूंढने लगे कि मैं करूंगा सेवा, जहाँ राधा माधव झूला करते हैं ऐसे मैं उसका सेवा करूंगा। और फिर वो अपना झाड़ू से जो है वहां पत्ता साफ करने लगे। प्रभुपाद जी को हंसी आ गई, वो थोड़ा और आगे गए और दूसरे झाड़ के नीचे जाके बोला यहाँ भी आते हैं राधा माधव, और देखो वहां भी आते हैं, और देखो वहां भी आते हैं। और फिर प्रभुपाद जी ने हंस के बोला कि आप राधा माधव को एक झाड़ के ऊपर में ऐसा करके बांध के क्यों रखना चाहते हैं, ये तो पूरा मंदिर परिसर उनका ही है, तो उनको जहां मर्जी शायद एक रात इस झाड़ के नीचे झूलन करे, दूसरी रात उधर जाके झूलन करे, आपको सब कुछ अच्छा से मेंटेन करना। और फिर तब से मायापुर में उन्होंने रूल बना दिया, तो अभी हम जब मायापुर जाते हैं हम लोग देखते कितना क्लीन एंड नीट, कहीं भी आपको एक पत्ता एक गंदगी दिखाई नहीं देती। तो अब ठाकुर जी आपके घर में आ गए हैं तो अब आपको घर भी ऐसा ही नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा। क्या मालूम गौर निताई, सुशीला माता जी क्या मालूम गौर निताई आपके घर के किस भाग में कब डांस करे, क्या करे, कौन सी लीला करे, तो आपको अब हर एक चीज घर में साफ रखनी पड़ेगी। हाँ तो बस और क्या, ठाकुर जी आपके घर में आए तो यही कुछ कुछ चेंजेस है जो आपको करने हैं। आप घर को साफ रखो, जो भी बनाते हो भगवान के लिए भाव से बनाओ, उसको ऑफर करो, और उसके अलावा भी भगवान को भोग ऑफर करना ही नहीं, सब कुछ जो भी आप चीज़ें खरीदते हैं भगवान को आप ऑफर करिए, और पूजा का जो भी आप एक रूम बनाया है उसको ठीक, और भगवान का अभिषेक अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक नियम बना लीजिए, एकादशी एकादशी आप करिए, या वीकेंड्स पे आप कर सकते हैं, और अगर आप हाउसवाइफ है तो रोज करिए, अगर पूरा पंचामृत अभिषेक नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा सा तुलसी, और आपके पास गंगा जल भी तो होगा मायापुर से जो आप लाते हैं, एक ड्रॉप डाल सकते हैं, तो अभिषेक करिए, भोग धराइए, थोड़ा सा फ्लावर का माला है। और गौर निताई जब आ गए हैं तो अब थोड़ा सा प्रचार भी करना है, तो आप जो है रेगुलरली आप घर में सबको बुलाइए भगवान का भजन कीर्तन। भगवान तो वही है जहाँ पे भगवान का भजन होता है। हमने केवलाष्टकम का क्लास लिया था तब याद है, हम लोगों ने एक श्लोका किया था, हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरि नामे केवलम्। हरि सदा वसे तत्र, हरि कहाँ वसते हैं, जहाँ पे भक्त भक्ति भाव से गायन्ति भक्ति भावेन, भक्ति भाव से जब उनका नाम बुलाते हैं, जब भजन करते हैं, वहाँ ही भगवान वसते हैं। तो अच्छे विग्रह आ गए इसलिए अब हमारे घर में गौर निताई आ गए, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। जहाँ पे कीर्तन होता है, भगवान का नाम, भगवान की कथा होती है, वहाँ भगवान विराजते हैं। तो अभी आपको कीर्तन रोज करना है सुबह शाम, वैसे भी माता जी को तो कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है, वो तो एक्सपर्ट है कीर्तन में, तो अभी सुबह शाम कीर्तन होना है, भोग धरना है। गौर निताई बहुत खाते हैं, गौर निताई के लिए आप अच्छे आइटम्स बनाइए, घर को साफ रखिए, और परिवार में परस्पर अच्छा संबंध बना के रखिए, और चेतन चरितामृतम पढ़िए, अलग अलग कथा पढ़िए, और बस आप हैप्पी। और किसी को कोई प्रश्न है, किसी को कोई क्वेश्चन? महीना बहुत ही सुंदर महीना है, अब हर एक दो दिन छोड़ छोड़ के सबके घर में गौर निताई की स्थापना होने वाली है। अभी श्रीनिवास केशव प्रभु के घर में परसों स्थापना है, तो अब रोज ही हमें अभिषेक, हमारे लिए तो बहुत आनंद है अभिषेक फीस्ट एंड अभिषेक। किसी को और कोई प्रश्न? हाँ हाँ, राजा ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि हमने चैतन्य महाप्रभु की स्थापना क्यों की, राधा कृष्ण या कोई और विग्रह हमने क्यों नहीं की, क्योंकि जब राधा कृष्ण की हम पूजा करते हैं तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, हमें बहुत सही तरह से सब पालन करना है, भोग धरना, उनके क्लोथ्स चेंज करना, उनका थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना ऐश्वर्य भाव में होना चाहिए, बहुत परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन जब हम गौर निताई प्रचार में मानते थे, और प्रभुपाद जी भी जब भी इस्कॉन का सेंटर कहीं भी स्थापना करते थे तो पहले की स्थापना करते थे, गौर निताई बहुत ही दयालु है, उनकी पूजा करने में ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के सिवाय हमारा आसरा और कौन है, अगर जिनके घर में गौरांगा की स्थापना हो गई वो पक्का जाएंगे, गौरांगा लेके जाएंगे। इसलिए प्रभु जी कुछ दिन पहले जब वृंदावन गए थे तो सडनली बिना कोई मतलब ये किए ने उन्होंने सबके लिए गौर निताई खरीद लिए, तो मुझे बोल रहे थे रास्ते में कि मैं हर वक्त सोचता हूँ कि कोई कुछ गलती ना कर बैठे, भक्ति जीवन से दूर ना चला जाए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ना तोड़ दे, तो मैं हर वक्त उनके लिए चिंता करता रहता हूँ। तो मैंने सोचा चिंता क्यों करना, सबके घर में गौर निताई दे देते हैं, बस एक बार सबके घर में गौर निताई दे दिया, अब वो गौर निताई का प्रॉब्लम है। अब कैसे उनको भक्ति में लाना है और कैसे उनकी रक्षा करना है, वो अब गौर निताई का प्रॉब्लम है। तो गौर निताई बहुत बहुत दयालु। एक्चुअली विग्रह की टेक केयर हमें करना चाहिए, लेकिन हम लोग इतने पतित हैं, यहाँ पे उल्टा है। जब श्रील प्रभुपाद ने, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया, मुझे याद नहीं आ रहा है, कहीं एक मंदिर बनाया, नया मंदिर, और विग्रह की स्थापना की, लेकिन वहां पे कोई भक्त नहीं था टेक केयर करने के लिए। जो नया भक्त बना अभी अभी, उसी को टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया, उसको ज्यादा महीना भी नहीं हुआ। लेकिन प्रभुपाद जी अब वहां रुक नहीं सकते थे, उन्हें और भी प्रचार के लिए जाना था। तो उन्होंने तब जाके विग्रह के पास में विग्रह से बात की, बोले कि एक्चुअली जब मैं कहीं किसी सेंटर से दूसरा सेंटर जाता हूँ, तो मैं भक्तों को बुला के बोलता हूँ कि देखो विग्रह की सेवा ठीक से करना, लेकिन यहाँ आपका सेवा करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं उल्टा बोल रहा हूँ। ठाकुर जी को बोलते, देखिए आप सबका टेक केयर करना, मैं जा रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं अब क्या करना है, ये लोग सब बहुत नए हैं, तो काइंडली आप जो है उनको ठीक से देखना, आपकी सेवा वो लोग कैसा करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन आप सबको देखना, बोल के भगवान को रेस्पॉन्सिबिलिटी देके गए कि मैं जब नेक्स्ट घूम के आऊँ तब तक सब ठीक रहना चाहिए सेंटर में। तो ऐसा है। तो चैतन्य महाप्रभु गौरांगा सबका ध्यान रखते हैं, गौरांगा इसलिए तो महावदन्या बोला गया है, कृष्ण से भी ज्यादा दयालु गौरांग है, इसलिए हम हर घर में गौरांग की स्थापना कर रहे हैं। तो बोलो श्री गौर निथाई की जय, गौरांगा नित्यानंदा, गौरांगा गौरांगा, जय श्रील प्रभुपाद की। ज्यादा समय नहीं बोलना चाहूंगी, कल वर्किंग डे है, सबको जल्दी जाना है। गौरांग कौन है? गौरांग राधा और कृष्ण का कंबाइन फॉर्म है गौरांग। जब भगवान कृष्ण ने देखा, देखो मैं इसको सिंपल में बताऊंगी कि बहुत सारे लोग नए हैं, एक अच्छा टीचर होता है, जो गुड टीचर, वो अच्छा से पढ़ाता है, लेकिन जो ग्रेट टीचर होता है वो खुद वो चीज को करके दिखाता है ना। तो कृष्ण ने सबको बोल के गए हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणागतं, सारे धर्म को आप छोड़ो, मेरी शरणागति में आ जाओ, मैं आपको ले जाऊंगा, मैं आपको मेरे धाम वापस ले जाऊंगा। लेकिन कृष्ण जब ये बोल के चले गए, उसके बाद में सर्वधर्मान परित्यज्य करना कैसे है वो कौन सिखाएगा? तो उसी को सिखाने के लिए कृष्ण फिर से आए। लेकिन हर बार जब कृष्ण आते हैं, वह किसी न किसी कारण से कोई ना कोई दानवों का या राक्षसों का वध करते हैं। तो जब उन्होंने श्री राम जी के अवतार में बहुत सारे राक्षसों का जब वध किया था दंडकारण्य में, तब सीता देवी को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि सीता देवी माँ है ना, तो माँ का दिल बहुत अच्छा होता है, तो बोलते हैं कि उनको मत मारिए। तो राम जी बोलते हैं मत मारिए, मेरे भक्तों को तंग करा है तो मारना पड़ेगा। तो सीता देवी बोलते हैं कि नहीं, आप मेरे को प्रॉमिस करिए कि कम से कम जब नेक्स्ट टाइम आप अवतार लेंगे तो आप किसी को मारेंगे नहीं, ये अस्त्र शस्त्र लेके आप नहीं आएंगे। तो भगवान ने प्रॉमिस दे दिया। लेकिन जब वो कृष्ण के अवतार में आए, तब भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया, पूतना सकता सुर त्रिनवर्ता। तब राधा रानी ने फिर कंप्लेन किया, आपने मुझे प्रॉमिस दिया था। तो कृष्ण ने बोला कि राधा तुम भूल गई, मेरा प्रॉमिस ये था कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मारूंगा, मैंने किसी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं, वो पुत्र मेरे को गोदी में लेके मुझे दूध पिला रही है तो मैंने दूध पी लिया, त्रिनवर्ता ने मेरे को गोदी में उठा लिया तो मैं उठ गया, मैंने कुछ किया नहीं, वो सक्तासुर मेरे मैंने कुछ नहीं, मैं अपना पैर मार रहा था, मैंने किसी को कुछ किया नहीं, तो मेरा कोई गलती नहीं। तब राधा रानी ने सोचा कि कुछ ना कुछ करके वर्ड जगलरी से मेरे को ये कर देते हैं। तो बोला नेक्स्ट टाइम जब अवतार लेंगे ना, तब मैं आपसे अलग नहीं, मैं आपके साथ अवतार लूंगी, तब आप किसी को मार नहीं सकते। तो इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया, तब राधा रानी कृष्ण के साथ में समा गए। तो अब चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है वो राधा और कृष्ण का कंबाइन रूप है। तो अब इसलिए देखिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में कितनी करुणा है, वो किसी को भी नहीं मारे हैं, मारे हैं लेकिन क्या मारे हैं, उसके अंदर का जो राक्षस गुण है उसको मार दिए है ना। चैतन्य महाप्रभु जगाई को मधाई को सबको भक्त बना दिए, तो उनके अंदर में जो राक्षसी गुण था उसको मार दिया और उनको भक्ति का प्रदान किया, लेकिन किसी को भी अस्त्र शस्त्र उठा के उन्होंने मारा नहीं। वो मारने जा रहे थे जगाई मधाई को, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने मना कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु का जो ये अवतार है ये राधा और कृष्ण का कंबाइन अवतार है। तो क्योंकि राधा रानी भी समाई हुई है तो आप समझिए कितना ज्यादा दया होगा, इसलिए मैं लगातार बोल रही हूँ ना कि सबसे ज्यादा दया चैतन्य महाप्रभु के अवतार में है, रूप में है, क्योंकि ये कंबाइन फॉर्म है। तो यहाँ पे राधा रानी की भी एक मर्सी जो है हम पे न्योछावर करते हैं राधा रानी। तो इसीलिए अगर हम भक्त बनना चाहते हैं, राधा कृष्ण को ही हम प्रेम करना चाहते हैं, तो भी हमें चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही जाना है, और कोई चॉइस नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ही हमें इजी से ले जा सकते हैं, डायरेक्टली राधा कृष्ण को अप्रोच करने का सामर्थ्य हमें नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही दया से हमें जो भी बुरे गुण है सबसे हमें मुक्त करते हैं और हमें कृष्ण का प्रेम देते हैं, जिसको प्राप्त करना बहुत बहुत मुश्किल है। कितने कितने साधुओं, कितने कितने जन्म से कोशिश कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है, उसको चैतन्य महाप्रभु फ्री से सबको प्रदान करते हैं। चले अभी गौर निताई का अभिषेक होगा। श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय।